बहुत ही महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी, इनका आविर्भाव दिवस था। आविर्भाव दिवस मतलब साधारण भाषा में जन्म दिवस, लेकिन भगवान के लिए और उनके शुद्ध भक्तों के लिए हम जन्म दिवस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं आविर्भाव या प्राकट्य, क्योंकि महाभगवान के जो महान भक्त होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, किसी बद्ध जीव की तरह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार यहां पर जन्म नहीं लेते हैं। हम सब साधारण जीव पूर्व जन्मों में कई कर्म कर चुके हैं, अमुक माता पिता मिलते हैं कर्मों के अनुसार, लेकिन जीव गोस्वामी ऐसे बद्ध जीवों में से नहीं थे। वो नित्य सिद्ध पुरुष हैं। नित्य सिद्ध पुरुष मतलब जो हमेशा सिद्ध अवस्था में भगवान के सानिध्य में, भगवान के धाम में निवास करते हैं। और ऐसे पार्षदों को भगवान खास करके उनकी लीला में भाग लेने के लिए भूलोक पर भेज देते हैं। श्रील जीव गोस्वामी वास्तव में विलास मंजरी हैं। हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है, लेकिन भगवान के धाम में भी उनका एक रूप है। भगवान के बहुत ही निकट के एक भक्त और सेवक हैं। अभी अभी जो हमने भजन कहा उसे षड गोस्वामी अष्टक कहते हैं, और इसमें वृंदावन के 6 गोस्वामियों का वर्णन हमने सुना। इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं सिंहासन पर, राधा गोकुलानंद के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए 6 गोस्वामी यहां पर हैं, षड गोस्वामी वृंदावन के। ये चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षद थे, और इन रविवार के सत्संग के कार्यक्रम में पिछले कई महीनों में हम षड गोस्वामियों में से 2 आचार्यों की चर्चा कर चुके हैं। आपको याद है किनका किया है? गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के संदर्भ में हमने कौन सा उत्सव मनाया था? आपने बहुत प्रसाद लिया था, चिड़ा दही उत्सव। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रील जीव गोस्वामी का। जीव गोस्वामी, इनके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि और एक महान आचार्य रहे हमारे संप्रदाय में, उन्होंने कहा है कि जीव गोस्वामी जैसे दार्शनिक न तो आज तक हुए हैं और शायद नहीं होंगे। इतने बड़े दार्शनिक थे उन्होंने। षड गोस्वामियों के, खास करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षा अर्थात चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को अनेक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। करीब करीब 4 लाख श्लोकों को उन्होंने लिखा, 25 से भी ऊपर ग्रंथ उन्होंने लिखे, जैसे कि गोपाल चंपू, हरि नामामृत व्याकरण, शत संदर्भ इत्यादि, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में लीला करते थे तो कई साल उन्होंने केवल एक शुष्क ज्ञानी और व्याकरण के विद्वान की लीला की, और अचानक जब वो गया गए उसके बाद वो जब लौट कर आए तो उनमें जो परिवर्तन आया उसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। क्या परिवर्तन हुआ था? जो पहले व्याकरण के अध्यापक निमाय पंडित, आज एक महान कृष्ण भक्त होकर लौट कर आए हैं, और भाव विभोर होकर वो गली गली में हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करते घूम रहे थे। सभी लोग विस्मित हो गए इनको देखकर। उन्होंने अपनी पाठशाला तो बंद नहीं की, लेकिन जो भी व्याकरण इत्यादि सिखाया करते थे उसे श्री कृष्ण से जोड़ देते थे। जो भी करना हो, जो भी बात की पुष्टि करनी हो, स्पष्टीकरण करना हो, कृष्ण को बीच में लाते थे। और इस तरह से इस आधार पर चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षा के अनुसार जीव गोस्वामी ने यह किताब लिखी थी, हरि नामामृत व्याकरण। जैसे आजकल भी जो संस्कृत पढ़ते हैं तो राम के नाम पे, हरि के नाम पे, ऐसे अलग अलग आधार पे हमें सिखाए जाते हैं, अलग अलग धातु इत्यादि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने केवल कृष्ण के नाम पर सारा एक व्याकरण खड़ा कर दिया, तो इसके ऊपर जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं। गोपाल चंपू नाम का ग्रंथ है, बहुत सुंदर, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और इन लीलाओं का रस बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और जहां तक दर्शन का सवाल है, उन्होंने ये 6 संदर्भ लिखे, 6 संदर्भ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। वैसे श्रील जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जो छोटे भाई थे वल्लभ, उनके बच्चे थे, उनके लड़के थे। और ऐसा हुआ कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, पहले तो इनका जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि कर्नाटक से कई पीढ़ियां पहले बंगाल में जा चुके थे। शायद आप में से किनके रिश्तेदार भी हुए होंगे, पता नहीं, हो सकता है। तो कई पीढ़ियों से वो बंगाल में रहे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत योग्य थे, बड़े विद्वान पंडित थे। इसलिए वहां के जो नवाब थे, नवाब हुसैन शाह, उनको उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया और कहा कि अगर आप मेरी सेवा में नहीं लगोगे तो मैं हिंदुओं के प्रति बहुत, और खास करके वैष्णवों के प्रति बहुत अत्याचार करूंगा। तो फिर उन्होंने सेवा स्वीकार की और फिर उनके नाम बन गए दबीर खास और साकर मल्लिक, मतलब मुसलमान नाम हो गए। लेकिन अंदर से वो बड़े वैष्णव थे, क्योंकि वो भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य सिद्ध भक्त थे, और हमेशा वो श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे और भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अब ऐसे हुआ कि दोनों को अंदर से प्रेरणा मिली कि चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था, कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उस समय तो उनका नाम ऐसा नहीं था, उनके हृदय में उन्होंने ज्ञान दिया उनको कि देखो मैं आया हूं और इस रूप में आया हूं। तो हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखते, एक आध बार चैतन्य महाप्रभु जवाब देते भी, कभी नहीं देते। एक बार उन्होंने ऐसे एक रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यही अभिलाषा व्यक्त करते थे उस पत्र में कि हम कब आपके शरण में आ पाएंगे, कब आपकी सेवा में हमारा जीवन हम अर्पण कर पाएंगे, कब आपका दर्शन कर पाएंगे, ऐसी भावनाओं को वो सतत व्यक्त करते रहे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पत्र में कहा कि जिस तरह से एक स्त्री है अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से आसक्त है, लेकिन अपनी पति की सेवा इतनी अच्छी तरह से करती है कि पति को बिल्कुल संशय नहीं होता है, और बस इतना ही लिख दिया। अब चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे, उनको ऐसे विषय में लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते थे कि अभी नवाब हुसैन शाह की सेवा अच्छी तरह से करते रहो, ये मत दिखाई देने दो कि तुम मेरे सेवक हो, मेरे भक्त हो, तुम सबको छोड़कर मेरे पास आना चाहते हो, ये बात गुप्त रखो, सही समय पर सारा इंतजाम हो जाएगा। तो इस तरह से वो सेवा करते रहे। नवाब हुसैन शाह की राजधानी थी रामकेली नाम के गांव में, जो मायापुर की यात्रा में गए, शायद आप में से कोई वहां गए भी होंगे। तो एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से रवाना हुए वृंदावन की ओर, निकल तो पड़े थे, अंत में वो वृंदावन इस बार नहीं पहुंच पाए। हजारों हजारों लोग उनके संग में आए और जो भी उनके संग आता उनका दर्शन करता वो भी शुद्ध भक्त बन जाता और वो भी उनके संकीर्तन में शामिल हो जाता। जब चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों को साथ में लेकर उत्तर की ओर जा रहे थे अचानक उन्होंने रास्ता बदल दिया और बदल के रामकेली की ओर चले। हालांकि रामकेली वृंदावन के मार्ग में नहीं पड़ता था और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत संकीर्तन किया और वहां पर दबीर खास साकर मल्लिक और वल्लभ वहां पर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए। जब चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए तो इन तीनों ने पूरा दंडवत प्रणाम किया। दंडवत मतलब दंडे की तरह है, दंडे की तरह नीचे गिर पड़े। जब व्यक्ति सीधे तरह से गिरकर प्रणाम करता है तो उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं और अलग तरह से प्रणाम भी होते हैं, जैसे साष्टांग प्रणाम है, पंचांग प्रणाम है, अलग अलग तरह के प्रणाम होते हैं। लेकिन दंडवत प्रणाम जो होता है ये सबसे श्रेष्ठ प्रणाम माना जाता है। तो इन तीनों ने दंडवत प्रणाम अर्पण किया चैतन्य महाप्रभु को और साथ साथ अपने दांतों में तृण घास लगा लिया और अपने गले में कपड़े वगैरह बांध कर ऐसे प्रणाम कर रहे थे महाप्रभु को, अपने आप को बड़े दीनहीन समझकर। और वास्तव में इनके हृदय में ये भावना थी कि हम तो बहुत नीच हैं, हम तो बड़े पापी हैं। ये शुद्ध भक्तों की पहचान होती है कि वो हमेशा अपने आप को बहुत नीच समझते हैं, बहुत पापी समझते हैं। हालांकि पाप का लेश मात्र भी प्रभाव उनके हृदय में नहीं होता, फिर भी उनका स्वभाव होता है, उनके गुण लक्षण ऐसे होते हैं। तो जब उन्होंने प्रणाम किया महाप्रभु को तो उठे ही नहीं, दंडवत करते ही रह गए। एक बार हमने एक भक्त को ऐसे दंडवत करते हुए देखा था मंदिर में, काफी समय उठे नहीं। हमने सोचा बड़े भक्त है और फिर जाके देखे कि वो सो गए हैं। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ ऐसे नहीं थे, वो सो नहीं गए थे दंडवत प्रणाम करते करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने आखिर उनको खुद अपने कर कमलों से उठा लिया और उठाकर आलिंगन किया और उस समय उनको नए नाम दिए उन्होंने। दबीर खास को उन्होंने नाम दिया श्री रूप, साकर मल्लिक को उन्होंने नाम दिया श्री सनातन और वल्लभ को उन्होंने नाम दिया श्री अनुपम। और इस प्रकार से बड़ा प्रेम का आदान प्रदान इनके बीच में हुआ। और उस समय श्री अनुपम के जो लड़के थे जीव, वो पास में थे, वो इन सारे चीजों को देख रहे थे, कैसे उनके पिता उनके चाचा बर्ताव कर रहे हैं, महाप्रभु के सामने दंडवत कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो माता पिता का व्यवहार जो है वो सही होना चाहिए। माता पिता जाप नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कैसे जाप करेंगे? माता पिता टीवी देखते हैं, बच्चों को बोलेंगे कि टीवी नहीं देखो, कैसे चलेगा? इसलिए बहुत जरूरी बात है। ये शनिवार को भी हम चर्चा कर रहे थे कि भक्तों के बीच में कभी कभी या आम तौर से बाहर भी देखा जाता है, छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। हमारे लिए फोन आता है, हम बच्चे को कहते हैं बोलो हम घर में नहीं है, हम घर में नहीं है, तो बच्चा फोन में क्या बोलता है, डैडी बोल रहे हैं कि वो घर में नहीं है। और फिर बचपन से ही ये झूठ बोलने की आदत शुरू हो जाती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है झूठ बोलना लगता है, छोटी झूठ से बड़ी झूठ बोलता है, फिर हम चिंतित हो जाते हैं, अरे हमारा बच्चा ऐसे कैसे हो गया। तो इसलिए बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, हाँ बहुत बुद्धिमान होते हैं, सबको नजर में देखते हैं बड़े कैसे व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों को देखकर ठीक उनकी नकल करते हैं। अगर बड़े घर में अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं फिर बच्चे भी अनुगमन करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जीव, श्री जीव ने देखा कि अरे कितनी अच्छी तरह से यहां बर्ताव हो रहा है, साधु संग हो रहा है। उस समय तो बहुत छोटे थे तो उन्होंने भी इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया और उस दिन के बाद कभी भी श्री गौर सुंदर को चैतन्य महाप्रभु को भूले नहीं। उन्होंने इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का सुंदर मुखारविंद अपने हृदय में स्थापित कर लिया कि मानो उनका हृदय एक कैमरा हो और कैमरे का लेंस उनके आंख हो। उनको हृदय में बसा लिया उन्होंने और कभी भी भूल नहीं पाए। और उस दिन के बाद दिन रात केवल यही सोचते रहे कि कब मैं चैतन्य महाप्रभु का संग कर पाऊंगा, कब उनके साथ में जा पाऊंगा। और फिर ऐसे हुआ कि रूप गोस्वामी अनुपम के साथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर रवाना हुए थोड़े समय बाद, और रास्ते में ही श्री अनुपम ने अपना प्राण त्याग दिया और भगवान के धाम में लौट कर गए। श्री जीव बड़े दुखी हुए क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता केवल पिता नहीं थे, वो एक महान वैष्णव थे। वो वास्तव में श्री राम के भक्त थे। उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि श्री रूप गोस्वामी ने एक बार उनसे कहा था कि अरे तुम अयोध्या के श्री राम की पूजा करते हो, लेकिन श्री राम तो वृंदावन के श्री कृष्ण के तो एक अंश अवतार हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो श्री राम की भक्ति में नहीं मिलेगा, इसलिए आप श्री कृष्ण की पूजा करो। तो बड़े भाई थे रूप गोस्वामी, तो अनुपम ने बात सुन ली। लेकिन अगले सुबह को आ गए आंखों में आंसू और चेहरा बड़ा दुखी। रूप गोस्वामी ने पूछा भाई क्या हो गया, तो अनुपम ने कहा कि मैंने रात भर आपके आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाया। मेरा हृदय टूट रहा है कि मेरे प्राणनाथ रघुनाथ की सेवा मैं छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। रूप गोस्वामी ने आलिंगन किया अपने भाई अनुपम को और कहा कि वास्तव में तुम ही सच्चे भक्त हो। तो बड़े महान शुद्ध भक्त थे अनुपम, इसलिए श्री जीव दुखी हो गए। श्री जीव के जो संस्कार लगे थे, उनके पिताजी, उनके चाचा इत्यादि, वो बड़े तीव्र संस्कार हुए। वैसे भी वो नित्य सिद्ध जीव थे, भगवान के धाम से आए थे, और अब ऐसे उनको कुटुंब मिला तो फिर निश्चित है कि बचपन से ही वो भक्ति करते रहे। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि ऐसे कई महान भक्तों की चर्चा है या वर्णन है जो कि बचपन से ही भगवान की सेवा करते रहे। ऐसे कोई भक्तों का उल्लेख आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उनके नाम जिनका श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जिन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति की? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, परीक्षित महाराज और उद्धव। और खास करके उद्धव और परीक्षित महाराज के बारे में बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ खेला करते थे, मतलब उन्होंने गुड़िये वगैरह बनाए थे, डॉल्स बनाए थे, और हमेशा उनकी सेवा किया करते थे और दिन रात इनकी सेवा में मग्न रहते थे। उनको भोग अर्पण किया करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनकी सेवा नाना तरह से करते थे। तो बचपन से ऐसे जो संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं, बड़े तीव्र होते हैं, फिर निकलते नहीं हैं और आगे जाके उस व्यक्ति का चरित्र बनता है इन संस्कारों से। अगर संस्कार घर में अच्छे नहीं रहे तो चरित्र भी उसी तरह का, स्वभाव भी उसी तरह का बनता है। तो खैर, श्री जीव बचपन से ही कृष्ण और बलराम से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण बलराम की मूर्ति उनके पास थी और सतत दिन भर उनकी सेवा किया करते थे। उनके कोई मित्र थे ही नहीं, कोई रुचि नहीं थी उनकी खेलकूद में, नहीं कोई शरारत करते थे, उनके बारे में कोई शिकायत नहीं थी किसी की। और कृष्ण बलराम की सेवा करते करते कभी कभी उनके आंखों से आंसू निकलते थे, कभी भाव विभोर होकर वो गिर पड़ते थे। इन लक्षणों को देखकर जो बुजुर्ग थे वहां के, वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतने छोटे उम्र में ऐसी भावना इस बच्चे में, बड़े आश्चर्य की बात है। एक दिन ऐसे हुआ कि वो प्रार्थना कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का भी दर्शन उन्होंने किया था उस दिन राम केली में, कि कब आपके दर्शन होंगे, कब आपका संग मैं प्राप्त कर सकूंगा। इस तरह से ये विरह की भावना से वो तड़प रहे थे और आंखों से आंसू आते आते वो थक के बाद में सो गए। और जब सो गए तो अचानक उन्होंने एक सुंदर सा स्वप्न देखा। इस स्वप्न में उन्होंने गौरांग महाप्रभु का सुंदर स्वर्ण वर्ण का रूप देखा और अपने हाथों को भुजाओं को ऊपर किए हुए संकीर्तन कर रहे थे और उनके साथ में उनके भक्त थे, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कई ऐसे भक्त थे। इतने प्रेम से, उत्साह से संकीर्तन चल रहा था और जीव गोस्वामी, ये जीव उस समय तो केवल श्री जीव थे, वो इस स्वप्न को देखते देखते भाव विभोर हो गए स्वप्न में भी, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का शरण वहां स्वप्न में भी ग्रहण कर दिया। और फिर यही चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गौर और निताई कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हो गए उनके स्वप्न में, क्योंकि कृष्ण बलराम की बहुत सेवा किया करते थे श्री जीव, और इस तरह से प्रकट हो गए और उन्होंने दर्शन दिया श्री जीव को। फिर से जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री जीव से कहा कि मैं तुम्हें नित्यानंद प्रभु के हवाले करता हूं। इस समय वास्तव में जब श्री जीव को यह स्वप्न आया तो चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु स्वधाम लौट के चले गए थे, नित्यानंद प्रभु लेकिन थे उस समय। तो यह स्वप्न में बात चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नित्यानंद प्रभु के आश्रय में दे रहा हूं, और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम सदा चैतन्य महाप्रभु के शरण में रहो, ऐसे आशीर्वाद दिया उनको। और फिर उस स्वप्न के बाद जीव ज्यादा से ज्यादा बेचैन होते रहे, बिल्कुल उस जगह टिक नहीं पाए। उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे तो श्री वृंदावन धाम जाना ही है। फिर बाद में उन्होंने मन बदल लिया, कहा कि नहीं, पहले मुझे नवद्वीप जाना चाहिए। महाप्रभु ने उनको अंदर से प्रेरणा दी कि वृंदावन जाने के पहले तुम नवद्वीप चले जाओ, क्योंकि नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु अभी भी निवास कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सामने कोई बहाना बनाया और नवद्वीप की ओर चल पड़े। नवद्वीप में पहुंचकर कई लोगों से पूछा कि नित्यानंद प्रभु कहां है। उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर में इशारा किया। नित्यानंद प्रभु को अंदर से पता चल गया कि श्री जीव अभी उनके पास आ रहे हैं। श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त उनका स्वागत करने आए। नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हुए श्री जीव को देखकर और उन्होंने असीम कृपा बरसाई उस बालक के ऊपर, अपने चरण कमलों को श्री जीव के सर के ऊपर रख दिया और सारे भक्त जो है हरि बोल कह के अपने आनंद को व्यक्त करने लगे। और इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को सारे नवद्वीप मंडल की परिक्रमा में ले गए और अलग अलग चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलों का दर्शन कराया। नवद्वीप मतलब नौ द्वीप, ये नवद्वीप मंडल कहलाता है। जैसे ब्रज ये एक मंडल है, केवल वृंदावन शहर नहीं लेकिन और कई जगह हैं, उसी तरह से जहां वृंदावन है और कृष्ण है उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु और नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम में और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें नाम अपराध का विचार करना पड़ता है, तो उसी तरह से जब हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं तो धाम अपराध का विचार करना होता है। और धाम अपराधों में से ये एक है कि नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम को अलग समझना। अगर हमने ये नहीं स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो फिर हम अवश्य ये धाम अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बिना हम श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते, खास करके राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। और नवद्वीप धाम की कृपा से हम वृंदावन धाम को समझ सकते हैं। वृंदावन धाम में जब हम जाएंगे, अगर हम कोई अपराध कर बैठते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। यहां भी अगर बाहर भी हम कोई पाप करते हैं तो उसका परिणाम तो मिलता ही है, लेकिन वृंदावन में वही पाप करेंगे 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए आचार्य बताते हैं कि वृंदावन में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। थोड़े समय के लिए जाके भक्तों के संग में वहां अगर यात्रा करनी हो, श्रवण कीर्तन थोड़ा बहुत करना हो, थोड़े दिनों के बाद लौट के आ जाना चाहिए। वृंदावन धाम उन लोगों के लिए है जो कि शुद्ध हैं। लेकिन नवद्वीप धाम में ऐसी कोई विचार नहीं है। वृंदावन धाम में कोई भक्त अनायास कोई पाप करे भी तो पाप क्षमा हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जाकर पाप करना चाहिए, यह भी एक धाम अपराध हो जाता है, जानबूझकर धाम में जाकर पाप करना। जैसे जानबूझकर नाम लेते लेते अगर कोई पाप हम करते हैं, ये सोचकर कि हरि नाम लेने से पाप का फल नष्ट हो जाएगा, तो हम चलो पाप करेंगे, नाम लेंगे, फिर से पाप करेंगे, तो ये एक नाम अपराध माना जाता है। ठीक उसी तरह से नवद्वीप धाम में अवश्य पापों का विचार नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन कहने की बात यह है कि नवद्वीप धाम औदार्य धाम कहलाता है, कृपा का धाम है, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु की नाना लीलाएं हुई थी अलग अलग तरह के उन 9 द्वीपों में। तो जीव गोस्वामी का वो सौभाग्य था कि स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको सारे नवद्वीप मंडल की यात्रा कराई, अलग अलग जगह में जाकर उनको उन जगह स्थलों का महात्म्य बताया। और इसके बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नवद्वीप धाम परिक्रमा। जो भी संवाद हुआ श्री जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु के बीच में, उसके बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर में अपने अंदर से प्रेरणा से युक्त जो उनके साक्षात्कार है उसके अनुसार उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो जब नवद्वीप परिक्रमा आरंभ करने वाले थे तो नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले श्री जीव को चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी और उनकी पत्नी श्री विष्णु प्रिया के पास ले गए। जब वहां पर पहुंचे योगपीठ पर, योगपीठ मतलब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का स्थान, वहां पर शची देवी, विष्णु प्रिया और शची देवी के जो सेवक थे वंशीवदन, उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया बड़े प्रेम से। श्री जीव को देखकर शची देवी बड़ी खुश हो गई। इतने तेजस्वी नम्र बालक जो कि कृष्ण भक्त, इतने अच्छे कृष्ण भक्त थे, तो सची माता ने भी उनको आशीर्वाद दिया, विष्णु प्रिया ने भी आशीर्वाद दिया। और फिर श्री जीव गोस्वामी कई दिनों तक नित्यानंद प्रभु के संग का प्राप्त करने लगे। अंत में नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दी श्री जीव गोस्वामी को और कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे कुटुंब को वृंदावन धाम भेंट में दिया है, क्योंकि तुम्हारे जो पिता थे उनके भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको उन्होंने आदेश दिया कि जाओ वृंदावन में बसो, वहां सुंदर भगवान कृष्ण के मंदिरों का निर्माण करो, वहां श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थली को फिर से ढूंढ के निकालो, वहां जाकर तुम ऐसे शास्त्र लिखो जिससे ये पता चले कि सारे वेदों का सार है श्री कृष्ण की भक्ति, और ऐसे भी ग्रंथ लिखो और अपने आचरण से भी दिखाओ कि वैष्णव का आचरण या व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव से कहा कि तुम भी चले जाओ और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के सेवक बन जाओ, लेकिन उसके पहले तुम वाराणसी में जाना, काशी में, वहां पर मधुसूदन वाचस्पति नाम के बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, और वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में आपको स्मरण होगा, वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, पहले मायावादी थे लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो भी शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए। तो श्री जीव वाराणसी चले गए, काफी समय तक वहां पर मधुसूदन वाचस्पति के टोल में, पाठशाला में सीखे श्रीमद् भागवत इत्यादि। और मधुसूदन वाचस्पति को आश्चर्य हुआ कि श्री जीव इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, कि एक बार सुनने से वो सभी चीजों को जान सकते थे और याद भी रख सकते थे, और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वाचस्पति अपने इस शिष्य का गुणगान सारे काशी में करने लगे और बहुत ही जल्द श्री जीव बड़े प्रसिद्ध विद्वान के रूप में जाने गए। और इस तरह से श्री जीव अपनी शिक्षा समाप्त करके पहुंचे वृंदावन में। जैसे वृंदावन आए, वहां के गोस्वामियों ने उनको पता चला कि श्री जीव आ रहे हैं, सब वृंदावन के बाहर आए उनका स्वागत करने के लिए। उनमें से सनातन गोस्वामी सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए श्री जीव ने सनातन गोस्वामी का आश्रय लिया और उनसे निवेदन किया दीक्षा के लिए। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, आप हमारे संग में रहो, लेकिन मैं तुम्हें रूप गोस्वामी के हवाले कर देता हूं। और फिर श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य बने। लेकिन रूप गोस्वामी ने श्री जीव को तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, मतलब दीक्षा तुरंत नहीं दी। उनके मन में यह इच्छा थी कि श्री जीव का प्रशिक्षण बड़े अच्छे ढंग से होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं दीक्षा दे सकता हूं। तो श्री जीव को उन्होंने नाना प्रकार के साधारण सेवाओं में लगाया। अब हमें याद रखना है कि श्री जीव उस समय भी बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे, शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने यह ठीक समझा कि उनको साधारण सेवा में लगाएं। इसलिए श्री जीव रूप गोस्वामी के आश्रम में वो बर्तन धोया करते थे, कभी झाड़ू मारा करते थे, मंदिर के कमार्जन किया करते थे, कभी रूप गोस्वामी के लिए वो कलम बनाया करते थे। उस जमाने में कलम दुकान में जाके मिलते नहीं थे, जैसे आज जाके आप कोई कलम खरीद लेते हैं, बॉल पेन फाउंटेन पेन खरीदते हैं, वैसे नहीं। उस समय पेड़ों से वो काट काट कर बनाने पड़ते थे, और कागज भी तो नहीं थे, नोटबुक वहां नहीं थे, वो पन्नों पे पत्तों के ऊपर लिखना पड़ता था उनको, और पत्ते के ऊपर भी कई ऐसी चीजें लगानी पड़ती थी जिससे कि जो अक्षर वहां पे लिखे जाए वो मिटे नहीं। तो इस तरह से श्री जीव रूप गोस्वामी की सेवा इस तरह से करने लगे। कभी कभी श्री रूप गोस्वामी के चरणों का मालिश करते थे, कभी भगवान के लिए हार बनाते थे, भगवान की सामग्री तैयार करते थे। इस तरह से छोटी 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 सेवाएं करते करते रूप गोस्वामी को बहुत प्रसन्न किया श्री जीव ने। तो इससे हम सीख सकते हैं कि भक्ति मार्ग में हमें हर एक तरह की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी इतने सालों का भक्त हो गया हूं या हो गई हूं और अभी ये सब सेवाएं मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा में कोई ऊंची नीची की कोई विचार नहीं होता है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन कितना बड़ा विद्वान है, कौन कितना है, भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कि हमारा हृदय कितना शुद्ध है, हमारे अंदर जो भक्ति की भावना है वो कितनी तीव्र है, हमारी इच्छा उनकी सेवा करने के लिए, उनके भक्तों की सेवा करने के लिए कितनी तीव्र है, हमारे हृदय में कितनी नम्रता है। वैष्णव गुणों की परीक्षा करते हैं भगवान, और भगवान को इन गुणों की परीक्षा करने में कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय में तो स्थित है, हमारे हृदय में जो कुछ है सब कुछ ठीक ठाक देख सकते हैं। कितना घमंड भरा है, कितना अहंकार है, कितना काम क्रोध लोभ मोह जितना है हृदय में सब देख सकते हैं। इसलिए भक्ति के किसी भी अवस्था में हमें किसी भी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। भक्त के लिए हां या नहीं, ये दो शब्द बहुत सावधानी से प्रयोग करने चाहिए। जहां तक भक्ति का सवाल है, हां 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 होना चाहिए, ना कभी नहीं होना चाहिए। जहां माया की पुकार आती है, भले किसी के माध्यम से आए, तो ना 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 होना चाहिए, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए। भक्ति के लिए सेवा आए ना कहें, माया की पुकार आए हां कहें। घर में टीवी चले, मन कहे चलो जाके देखते हैं, हां 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 नहीं, उस समय ना 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 होना चाहिए। चलो अभी सत्संग का समय हो गया जाएं, तो उस समय हां 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 होना चाहिए, ना 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 नहीं होना चाहिए। तो जब भी किसी भी तरह की सेवा के लिए हमें मौका मिले, हमें समझना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह सेवा की संधि मिल रही है। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम राधा और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधे, हे कृष्ण, कृपया हमें सतत आपकी सेवा में आप रखिए, आपके चरण कमलों का आश्रय हमें सदैव दीजिए। और जब भगवान हमें सेवा का मौका देते हैं फिर हम कहते हैं नहीं, नींद आती है, हमें कहीं जाना है, हमें कुछ करना है, और काम है, ये है, हम बहाने बनाएंगे, तो कृष्ण भी हमें भक्ति देने में बहाने बनाएंगे, हमें भक्ति नहीं देंगे। इसलिए भक्ति में बहाने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जीव गोस्वामी इतने शुद्ध भक्त होने के बावजूद, भगवान के नित्य सिद्ध निकट के पार्षद होने के बावजूद, छोटी 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 सेवा करने में बड़ा आनंद लेते थे, बड़े हृदय से करते थे। ये है सेवा। सेवा ऐसा नहीं कि बस बताए तो करें, कैसा बोझ है, अरे बताए तो कहा है, हमको सेवा दी गई है, करें, ये बोझ कब उतर जाए, खत्म कर दें सेवा और मामला निपटा लें और मोक्ष प्राप्त कर लें इस सेवा से, आज के लिए तो कम से कम ये खत्म कर दें। ये सेवा नहीं है। सेवा क्या है? जो प्रेम भरे, भक्ति भरे हृदय से जो किया जाता है, इस भावना से जो किया जाता है कि हमारे जीवन की समसिद्धि इस कार्य के ऊपर निर्भर है, चाहे वो साधारण से साधारण कार्य क्यों ना हो, ये है सेवा। और ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो और हमें क्या चाहिए? ये हमारे जीवन की सफलता है। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम्। हमारे बहुत सारे निहित कार्य होते हैं अपने अपने स्थान के अनुसार, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, लेकिन इन सब की संसिद्धि क्या है? कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। तो श्री जीव के ऊपर श्री रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। अब ऐसे हुआ कि एक दिन वृंदावन में एक बहुत बड़े विद्वान आए जिनका नाम था रूप नारायण, और हृदय में बहुत घमंड था। भगवान के भक्त नहीं थे ये, शुष्क ज्ञानी थे। और वो सारे भारत में वो भ्रमण करते थे, दिग्विजय पंडित अपने आप को कहलाते थे, और सबको जाकर वो चुनौती देते थे कि चलो मेरे सामने आओ, मेरे साथ कोई प्रतियोगिता करो तर्क के बारे में, शास्त्रों के ऊपर। और सबको हराकर वो उनको एक विजय पात्र में दस्तखत कहने के लिए कह देते। इस तरह से उनके विजय पात्र में बहुत सारे नाम थे, देश भर के जो बड़े बड़े पंडित थे उनके नाम थे। और जहां भी जाते थे सबसे पहले ये दिखाते थे कि देखो इतने सारे बड़े बड़े पंडितों को मैंने परास्त कर लिया है, अब मेरे साथ आओगे, मेरे सामने आओगे, मुकाबला करोगे? तो सभी लोग उन नामों को देख कर कहते थे नहीं नहीं आप सबसे बड़े विद्वान हैं। इतना घमंड था। ऐसे घमंडी व्यक्ति को भक्ति कभी नहीं मिल सकती। तो वो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आए, उन्होंने सुना था कि वृंदावन में ये दो बहुत बड़े पंडित रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उनके पास आए और बड़े गर्व से, अभिमान से कहने लगे कि देखो मेरा नाम ये है दिग्विजयी रूप नारायण, और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तुरंत उन्होंने समझ लिया, पहचान लिया रूप नारायण को। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी दृष्टि एक्सरे दृष्टि होती है। एक्सरे जानते हैं ना, जब हड्डियों में कोई चोट लगती है तो आप फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, तो एक्सरे की दृष्टि होती है। मतलब वो आपके शरीर के अंदर आपके हृदय में क्या है वो जान लेते हैं। अंदर उनको मुंह के अंदर से हृदय में डालकर दूरबीन से दिखना नहीं पड़ता है, सीधे देखकर पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या है। ये बनावटी आदमी है, नकली आदमी है या असली आदमी है, ये ढोंग कर रहा है या सच्चा है, ये असली सिक्का नकली सिक्का पहचान लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया रूप नारायण को और सोचा मन में कि ऐसे आदमी से समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। वैष्णव कभी मान और प्रतिष्ठा के लिए अपेक्षा नहीं करते हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, विद्यापति नाम के महान वैष्णव कवि ने कहा है कि पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन तीन चीजों के लिए सारा संसार घूम रहा है। सभी लोग इच्छुक हैं इन तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक रेगिस्तान में जो व्यक्ति भूखा प्यासा भटक रहा है, उसको एक बूंद पानी पिलाएंगे, क्या वो आदमी संतुष्ट होगा? कभी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो जीव यहां पर बद्ध अवस्था में भटक रही अलग अलग योनियों में कृष्ण की खोज में, लेकिन जानता नहीं वो व्यक्ति कृष्ण को खोज रहा है, उसे ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले तो उसका दुख का निवारण तो नहीं होगा, उसको तो केवल कृष्ण भक्ति चाहिए। तो वैष्णव कभी भी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, उसको विष्ठा के बराबर समझते हैं। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत रूप नारायण से कह दिया, हम तो कोई बड़े विद्वान नहीं है, हमें तो कुछ नहीं मालूम शास्त्रों के बारे में, और आप तो दिग्विजयी पंडित हैं, हम आपका मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते। रूप नारायण सोचने, अरे वाह, देखो कहा ठीक है, अगर आप मुझे श्रेष्ठ मानते हो तो विजय पत्र पे आप दस्तखत कर लो। हाँ हाँ, तुरंत रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने दस्तखत कर लिए। तो और सिर फूल गया रूप नारायण का। तो जाते जाते मन में विचार आया कि हाँ ठीक है, अब मैंने ये भी सुना है कि इनका भी कोई एक रिश्तेदार है, कोई और एक नव युवक है, वो भी बड़ा विद्वान है, ऐसे सुना है, जाते जाते उसका भी नाम क्यों नहीं लेके जाए। अब जब आए हैं, वृंदावन को भी हमने जीत लिया है, तो चलो इसके पास भी जाते हैं। तो श्री जीव के पास गए और कहा कि देखो, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हमने परास्त किया, देखो इनका दस्तखत अभी तुम भी कर लो, या तुम भी हमसे बात करना चाहते हो। तो जीव गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इसकी ये मजाल, इसने रूप गोस्वामी का नाम ऐसे दे दिया, इसने पहचाना नहीं कि ये तो इतने महान भक्त है, अपने नम्रता से उन्होंने ऐसे दस्तखत कर लिया, इसको तो सबक सिखाना चाहिए। किसके लिए सबक सिखाना चाहिए? मेरे लिए नहीं, ताकि दुनिया समझे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कौन है, ये व्यक्ति भी समझ जाए कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, ये कितने महान है। तो उस समय जीव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, आपसे टक्कर हम लेंगे। फिर उस समय 7 दिन लगातार उनमें वाद हुआ, संवाद चलता रहा, और 7 दिन के बाद जो वहां उपस्थित लोग थे उनका यह निर्णय रहा कि जीव गोस्वामी स्पष्ट रूप से इसमें विजयी हुए हैं। और फिर रूप नारायण जो है अपना सर झुकाकर वहां से उनको निकल जाना पड़ा, वृंदावन अंत हो गया। लेकिन जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास वापस गए और उन्होंने घटना बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, ये व्यक्ति इतना दुष्ट है, इतना घमंडी है, आप दोनों के नाम उन्होंने लिखे हैं वहां पर, तो रूप गोस्वामी को बड़ा गुस्सा आया कि अरे तुमने अपना कीमती समय जो कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, वो ऐसे व्यक्ति के साथ वाद करने में क्यों बर्बाद किया? इसका मतलब है कि तुम केवल प्रतिष्ठा के अभिलाषी हो, तुम भी उसके तरह ही दिग्विजयी बनना चाहते हो, तुम भी मान सम्मान की अपेक्षा करते हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, तो चले जाओ यहां से, मेरे साथ मत रहना तुम। श्री जीव को अचानक धक्का पड़ गया हृदय पे, अरे ये क्या हुआ? लेकिन श्री जीव ने ऐसा नहीं सोचा, अरे मैंने तो सही किया था, मेरे मन में कोई ये नहीं, ये कैसे बात बोल रहे हैं हमें। तो देखिए, जब हमारे ऊपर वैष्णव के ऊपर दोष लगाया जाता है किसी चीज का, अगर वैष्णव दोषी नहीं है फिर भी वो दोष स्वीकार करता है, ये है वैष्णवता। देखिए वैष्णव होना क्या चीज है, नम्रता क्या चीज है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक बार बंगाल में एक व्यक्ति थे, वो कवि थे, तो वो वैष्णव बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत कुछ सुना था वैष्णवों के बारे में, और सुना था कि चलो वैष्णव बनने से हमें सुना है कि बहुत कुछ उन्नति हो सकती है जीवन में। तो उन्होंने वैष्णव के संग में वो आए और फिर थोड़ा बहुत उनको ज्ञान मिला वैष्णवता का, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वैष्णव धर्म को त्याग दिया। उन्होंने एक श्लोक लिखा, वैष्णव हर मोने चिलो शाद त्रिनाद अपि श्लोक सुने पोड़े गेलो बाद। इसका मतलब है, वो लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से वैष्णव होने की अभिलाषा मेरे मन में थी, लेकिन मैंने त्रिनादपि श्लोक सुन लिया। त्रिनादपि श्लोक क्या है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य वेदों का, उपनिषदों का सार है, क्योंकि ये जो चार लक्षण है, ये चार गुण हैं, अगर किसी व्यक्ति में हो तो वो हरि नाम सतत ले सकता है। किसी को हरि नाम अगर लेना है तो ये चार गुण अनिवार्य हैं, केवल अनुकूल नहीं, अनिवार्य होने ही चाहिए। और वो क्या है? पहली बात, त्रिनाद अपि सुनिचेन, तृण से भी अधिक नम्र बनना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए, अमानिना मान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मान देना दूसरों को मान सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। तो वो कवि कहने लगे, त्रिनाद अपि श्लोक सुने पुड़गल बाद, कि मैं वैष्णव तो बनना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन जब मैंने ये श्लोक सुना है कि हमें नम्र बनना चाहिए, तृण से भी ज्यादा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनना चाहिए इत्यादि इत्यादि, हमने सोचा हमसे नहीं होगा, अभी वैष्णव होने की इच्छा हमने त्याग कर दी है। तो वैष्णव को चाहिए नम्रता, ये सारे गुण होने। तो जीव गोस्वामी ने दिखाया कि वैष्णवता क्या चीज है। हालांकि उनका दोष नहीं था, वो निर्दोष थे, लेकिन फिर भी हृदय से उन्होंने सोचा कि हाँ, वास्तव में जो रूप गोस्वामी मुझे बतला रहे हैं वो सही है, मैं मान की अपेक्षा करता हूं, इसलिए इस हेतु मैं गया था, मैं वाद करने गया था। जो भौतिक भावना क्या होती है, अगर हम दोषी हैं तो हम दोष दूसरे के ऊपर ढकेल देना चाहते हैं कि मैंने नहीं किया, उसने किया। और अगर दूसरों के ऊपर कोई श्रेय आता है तो वो श्रेय हमारे लिए लेना चाहते हैं, दूसरे को अच्छा काम किया तो उसका श्रेय हम लेना चाहते हैं, ये भौतिक भावना होती है। लेकिन आध्यात्मिक वैष्णवता देखिए क्या है, जीव गोस्वामी के जीवन इसे हम समझ सकते हैं। तो जीव गोस्वामी बेचारे चले गए वहां से, और एकांत स्थान में जाकर बहुत उनको पश्चाताप हो रहा था कि अरे मैं कितना घमंडी आदमी हूं, कितना बुरा हूं, कितना पापी हूं। कई दिन ऐसे बीत गए। एक बार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आए और कहने लगे, अरे रूप, आपने शायद चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं किया है। अच्छा, कौन सी बात है जो हमने ग्रहण नहीं किया? वास्तव में रूप गोस्वामी वो तो बड़े पंडित थे, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, चैतन्य महाप्रभु ने स्वतः उन्हें उपदेश दिए थे 10 दिन लगातार प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में। हमें अगर कोई आके बोले, प्रभु या माता जी आपको महाप्रभु के उपदेश नहीं मालूम है, गीता में क्या आपको नहीं मालूम है, हम कहेंगे अरे कैसे बोल रहे हो, आपसे ज्यादा हमें मालूम है। लेकिन रूप गोस्वामी इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी वो कहने लगे, नहीं बात होगी, बताओ मैं कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, कहो तो सही, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? तो एक के बाद एक, एक के बाद एक रूप गोस्वामी कहने लगे। फिर वो एक शिक्षा के ऊपर आए, जीव दया। जीव दया मतलब सारे जीवों के ऊपर दया करना, नाम रुचि, जीव दया, नाम आश्रय इत्यादि, वैष्णव सेवा, ये सारे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत हैं अलग अलग। जो जीव दया का मतलब सारे जीवों के ऊपर दया करना, तो सनातन गोस्वामी जब कहा हाँ जीव दया, तो रूप गोस्वामी समझ गए कि सारे जीवों के ऊपर दया करना है, लेकिन अपने जीव के ऊपर भी तो दया करना है, श्री जीव के ऊपर। तो फिर उन्होंने स्वयं जाकर रूप श्री जीव गोस्वामी को वापस बुला लिया। और थोड़े ही दिन बाद इसी तरह की एक घटना और हुई। वल्लभाचार्य नाम के एक महान वैष्णव वहां आए थे। वो वैसे चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा उम्र में बड़े थे, चैतन्य महाप्रभु भी उनको वरिष्ठ मानते थे। उनके साथ संवाद भी कई बार हो चुका, इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी करते हैं। तो जब एक बार वल्लभाचार्य श्री रूप गोस्वामी से भेंट करने आए, तो श्री रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे जो आज भक्तों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनके लिए। आपको याद होगा कि हम भक्ति के 6 लक्षणों की चर्चा कई रविवारों से कर रहे हैं। 5 लक्षण हमें समाप्त किए। आपको याद है वो कौन से लक्षण है? पहला लक्षण कौन सा है भक्ति का? क्लेशघ्नि। दूसरा शुभदा। तीसरा, एक हफ्ते में भूल गए, मोक्ष लघुताकृत। चौथा सुदुर्लभा। पांचवा शांद्रानंद विशेषात्मा। और छठा श्री कृष्ण आकर्षिणी। 5 गुणों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारे 6 गुणों का वर्णन इस ग्रंथ में लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में, जो उस समय श्री रूप गोस्वामी लिख रहे थे। तो जैसे वो लिख रहे थे, उन्होंने देखा कि वल्लभाचार्य आए हैं और वो तो वरिष्ठ थे, तो मर्यादा की दृष्टि से देखा जाए तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि मेरे लिए उचित है कि मैं ये ग्रंथ वल्लभाचार्य को दे दूं और कहूं कि इस ग्रंथ में जो भी भूल चूक हुई हो, गलतियां हुई हो, वो सुधार कर ठीक करके वो लौटा दें। वल्लभाचार्य ने कहा कि ठीक है। उन्होंने देखा वो ग्रंथ को और कहा कि ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, 2-3 चूक जो है, भूल चूक उन्होंने निकाली। और उस समय वो शिव जी के पास आए लौटते लौटते। उन्होंने शिव जी से कहा कि देखो, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, इसमें ये गलती यहां पर है, ये है, ये है, ये है। तो जीव गोस्वामी ने देखा, कहा अरे ये तो गलती नहीं है, वास्तव में जिस दृष्टिकोण से रूप गोस्वामी देख रहे हैं वो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सही है। थोड़ा संवाद हुआ और जीव गोस्वामी ने सिद्ध करके दिखाया कि वास्तव में जो मूल बात रूप गोस्वामी ने लिखी थी वही वास्तव में सही है, और जो भूल निकाली है उन्होंने वो भूल भूल नहीं है, वो उन्हीं की भूल है कि उन्होंने भूल निकाली है। तो वल्लभाचार्य ने कहा, आश्चर्यचकित हो गए श्री जीव गोस्वामी की विद्वत्ता को देखकर, उस ग्रंथ को लेकर वापस चले गए रूप गोस्वामी के पास और कहने लगे कि नहीं नहीं, जो आपने लिखा है वही सही है। तो अरे ये कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आपने जो कहा तो ये गलती है, मैं सुधारूंगा उसे। नहीं नहीं नहीं, तो रूप गोस्वामी कहने लगे कि ये आपका मन कैसे बदल गया? फिर वल्लभाचार्य ने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने जीव गोस्वामी से मुलाकात की, ऐसे भक्त, ऐसे बड़ा विद्वान, मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तो जब वल्लभाचार्य चले गए तो रूप गोस्वामी ने फिर से श्री जीव को बुलाया, फिर से तुमने यही किया, ये वैष्णवता है क्या? तुम्हें पता नहीं था कि वल्लभाचार्य मेरे से वरिष्ठ है और ये मर्यादा के खिलाफ है, मर्यादा व्यतिक्रमण है ये, कि तुमने उन्होंने कही हुई बात को ठुकराया, तुमने उनकी बात का विरोध किया, उनको परास्त करने का प्रयास किया तुमने, हालांकि तुमसे क्या हमसे भी वो ज्यादा वरिष्ठ है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे हृदय में बहुत घमंड है, इसलिए घमंड जिसके हृदय में है वो वृंदावन में नहीं रह सकता है, चले जाओ यहां से। फिर से श्री जी वहां से चले गए और इस बार भी अपने हृदय में यही सोच रहे थे कि मैं कितना नीच हूं, मैं कितना पापी हूं। और इस बार मथुरा के बाहर जाकर वो एक ऐसे खड्डे में जाकर बैठ गए जिसमें कभी कभी मगरमच्छ आश्रय लिया करते थे पहले के जमाने में। अभी मगरमच्छ भी छोड़कर चले गए थे क्योंकि नदी वहां से अलग हो गई थी, मार्ग बदल गया था, और वहां बैठकर दिन रात रोया करते थे। और वहां के जो साधु थे या निवासी थे, उन्होंने भी देखा कि यहां कौन है, ये बाबा जी कौन है, यहां दिन भर रात भर रह के रोता है इस तरह से। जब सनातन गोस्वामी ढूंढते ढूंढते वहां पर आए, पूछ रहे थे सब वहां के लोगों से, ऐसे आपने किसी साधु को देखा है क्या? और वर्णन किया तो लोग कहने लगे, देखा तो नहीं लेकिन हम सुनते रहते हैं, एक साधु वहां है, दिन रात रोता रहता है। तो सनातन गोस्वामी ने समझ ले कि ये तो श्री जीवी होंगे, कितनी तपस्या कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने जाकर फिर श्री जीव को बाहर ले आए और वापस रूप गोस्वामी के पास वो लेकर आए। तो हमें श्रील रूप गोस्वामी के बारे में कोई बुरे विचार नहीं होने चाहिए, ऐसे क्यों किया उन्होंने श्री जीव के बारे में? दोनों महान आचार्य हैं। वास्तव में श्री रूप गोस्वामी इस कार्य से ऐसा दंड श्री जीव गोस्वामी को देने से ये सिद्ध करना चाहते थे कि देखो वृंदावन में रहना है तो नम्रता कितनी आवश्यक है, कृष्ण भक्त होना है तो ऐसे गुण होने आवश्यक है हमारे लिए। हालांकि रूप गोस्वामी को पता था कि जीव गोस्वामी निर्दोष है, वो तो महान भक्त है, नित्य सिद्ध है, श्री कृष्ण का पार्षद है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप गोस्वामी सारे जगत के लिए, आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सिद्ध करके दिखाना चाहते थे कि श्री जीव गोस्वामी के वैष्णव गुण तो देखो कितने महान है, ये इसकी नकल कोई नहीं कर सकता है, अतुल्य है इनकी वैष्णवता। तो वास्तव में अपने शिष्य जीव गोस्वामी का गौरव करना चाहते थे, इसलिए रूप गोस्वामी ने ऐसे किया। इस तरह से समय बीतता गया और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों वापस कृष्ण के धाम में लौट कर गए अपने शरीर को त्याग कर। और उस समय श्री जीव गोस्वामी बड़े महान वैष्णव थे, इतने सारे ग्रंथों को लिखा था, इतने बड़े विद्वान थे, इतने प्रसिद्ध हो गए थे सारे वैष्णव समाज में, इसलिए सारे वैष्णवों को, गौड़ीय वैष्णवों के बीच में शिव जीव गोस्वामी को प्रमुख माना गया, गौड़ीय वैष्णवों के नेता बन गए वो। मतलब आजकल के नेता जैसे बनते उस दृष्टि से नहीं, चुनाव नहीं, लेकिन स्वाभाविक तौर से एक सम्मान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से सभी लोग शिव जीव गोस्वामी को वरिष्ठ या सर्वश्रेष्ठ समझते थे। और इस तरह से श्री जीव गोस्वामी वृंदावन में रह के अपना भजन और प्रचार जारी रखने लगे। जगह जगह से लोग, महान वैष्णव अपने शिष्यों को जीव गोस्वामी के पास भेजते थे प्रशिक्षण के लिए। हृदय चैतन्य नाम के एक वैष्णव थे बंगाल में, उन्होंने अपने शिष्य कृष्णदास को जीव गोस्वामी के पास भेजा, उनका नाम बाद में श्यामानंद पंडित हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी अपने शिष्य श्रीनिवास आचार्य को जीव गोस्वामी के पास भेजा। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने शिष्य नरोत्तम दास को श्री जीव गोस्वामी के पास भेजा, और ये तीन भक्त बड़े घनिष्ठ मित्र हो गए। और एक दिन श्री जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की पत्नी जाह्नवा देवी, उनका पत्र आया बंगाल से कि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, वो संस्कृत भाषा में है, और वैसे भी बंगाली में भी जो थोड़े बहुत ग्रंथ हैं वो बंगाल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए कृपया इन ग्रंथों को बंगाल में वितरण करने का कष्ट करें। तो शिव जीव गोस्वामी ने अपने मन ही मन में कहा, शिरोधारी, इस आदेश को उन्होंने ग्रहण किया और पहली बार वैष्णव इतिहास में पुस्तक वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। हम हर रोज रविवार को भी पुस्तक वितरण के स्कोर्स की घोषणा करते हैं ना, ये भक्त ने इतने सारे पुस्तकों का वितरण किया, महाबिग बुक, छोटे बुक, लघु पुस्तक इत्यादि। तो ये प्रभुपाद जी ने कार्यक्रम विश्व भर में आरंभ किया था, उसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस कार्यक्रम को आरंभ करने वाले आचार्य रहे श्री जीव गोस्वामी। उन्होंने अपने इन तीन शिष्यों को, शिक्षा शिष्यों को भेज दिया बंगाल में ग्रंथों को लेकर। इस तरह से जीव गोस्वामी आदि गुरु हैं पुस्तक वितरण के कार्यक्रम के। और इस तरह से जीव गोस्वामी वृंदावन में रहे, उन्होंने राधा दामोदर मंदिर का निर्माण किया। राधा दामोदर के विग्रह जो हैं, स्वयं रूप गोस्वामी ने निजी अपने हाथों से उन्होंने बनाए हुए थे और श्री जीव को भेंट दिए थे, लेकिन उस समय मंदिर नहीं था, तो श्री राधा दामोदर मंदिर श्री जीव गोस्वामी ने बनाया। वृंदावन में 7 महत्वपूर्ण प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि राधा मदन मोहन मंदिर जिसका निर्माण सनातन गोस्वामी ने किया था, राधा गोविंद मंदिर जिसका निर्माण रूप गोस्वामी ने किया था, राधा श्याम सुंदर मंदिर जिसका निर्माण श्यामानंद पंडित ने किया था, राधा गोकुलानंद मंदिर जिसको कि मधु पंडित गोस्वामी ने किया था निर्माण, और राधा गोपीनाथ मंदिर जिसका निर्माण रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था, राधा रमण मंदिर जिसका निर्माण किसने किया था, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, किया था। इसकी लीला हम बड़े विस्तार में सुन चुके हैं कई रविवार पहले। इस तरह से ये सारे प्रमुख मंदिर है वृंदावन में, अलग अलग आचार्यों ने इनका निर्माण किया, लेकिन राधा दामोदर मंदिर का निर्माण जीव गोस्वामी ने किया। राधा दामोदर मंदिर गौड़ी वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थान में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी इत्यादि आकर एकत्र होकर कृष्ण कथा किया करते थे, चर्चा किया करते थे, और इसी स्थान में रूप गोस्वामी की समाधि है, और इसी स्थान में जीव गोस्वामी भी रहे, उनकी समाधि भी है, और इसी मंदिर में श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लगातार 6 साल रहे। श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था उनको कि वो विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करें। तो 26 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी को यह आदेश मिला था। तब से 40 साल तक वो इस आदेश के ऊपर चिंतन मनन करते रहे, 40 साल तैयारी करते रहे इसके लिए। देखिए उनकी दृढ़ता कितनी थी, कभी भूले नहीं इस आदेश को। और 60 साल की उम्र से आगे चल के वो राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे सन्यास आश्रम को स्वीकार करने के बाद। और यहां पे अक्सर जब भी वो बैठा करते थे रूप गोस्वामी के समाधि को देखा करते थे। यहां पे बैठ के उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, पहले 2 स्कंद यहां पर उन्होंने उनकी टीका लिखी, और कई 2-4 और ग्रंथ भी वहां पर लिखे उन्होंने। इस तरह से जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस 3-4 दिन पहले ही हो गया, तो हमें श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, महान आचार्य हैं, हम षड गोस्वामी के अनुयायी हैं, रूपानुग हैं, इसलिए जीव गोस्वामी की कृपा हम प्राप्त करेंगे तो हम कृष्ण भक्ति में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो, टीका हो, तो आप पूछ सकते हैं। और उनके शिक्षा को सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमें सुनना चाहिए, हमारे हृदय भी शुद्ध हो जाता है और हमारे संप्रदाय के बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी मिलती है।
गोस्वामियों में से श्री जीव गोस्वामी जी का कौन सा चित्र है इसमें जो भगवान के चरणों में है?
अब ये आपने गूगली डाल दी, गूगली समझते हैं ना आप, तो जानते ही होंगे। वैसे मैं तो स्पेक्युलेट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बोलना उचित नहीं है। मेरे मन में तो है, लेकिन मैं व्यासासन पर बैठकर नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन श्री जीव गोस्वामी वैसे 3 नंबर के थे अगर देखा जाए तो, आप अनुमान लगाइए। लेकिन फिर भी हम यहां बैठकर नहीं कहेंगे, अभी और संशोधन करके शायद हम पिन पॉइंट कर सकेंगे कि कौन से हैं इनमें से 6। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो हम जानते हैं, बीच में हैं, लेकिन और 3 गोस्वामी के बारे में हमें देखना होगा, लेकिन अलग से उनका चित्र मिलेगा आपको। ठीक है, और कोई प्रश्न? इकड़े प्रश्न आहे, ज्यावेळी आपण कृष्ण भक्ति मध्ये येतो त्यानंतर आमची देवी देवतांची पूजा वगैरह काही करू शकत नाही, पण कृष्ण भक्ति मध्ये आल्यानंतर फक्त आम्ही 16 माला 4 नियमांचं पालन करतो, पण आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान आम्हाला नसते, तेव्हा इतके केल्याने भगवंत खुश होतात काय? प्रश्न है कि हम जब भक्ति में आते हैं हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, केवल हम 16 माला जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, तो इससे भगवान खुश होंगे क्या? आप क्या समझते हैं? हाँ, अगर हमारी भावना ठीक रही तो भगवान खुश होंगे। हाँ, जानकारी भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए कि हमें क्यों कृष्ण का भजन करना चाहिए, कैसे देवी देवता भी कृष्ण के अंग हैं, इसलिए अलग से उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हमें जानना चाहिए अच्छे ढंग से, इसलिए हमें बार बार सत्संग में आना चाहिए, हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम विद्वान न हो, हमें दर्शन का, गीता भागवत का इतनी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं भी हो, भगवान ये नहीं देखते हैं। हालांकि हमें प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मूल बात नहीं है। मूल बात यह है कि हम कितना भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, कितना भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भावग्राही जनार्दन कहते हैं, वो हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, हमारे ज्ञान को नहीं। ज्ञानग्राही जनार्दन नहीं कहते हैं भगवान को, भगवान को भावग्राही जनार्दन कहते हैं। लेकिन हमारी भावना जो है वो भावुकता नहीं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। इसलिए हमें भक्तों के संग में आकर हमें ज्ञान प्राप्त करने का, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी साधना करते रहना चाहिए, फिर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। प्रश्नाचा उत्तर मिळाला, ज्ञानचा होता। और किसी को कोई प्रश्न है क्या?
हरे कृष्णा।
कोई अच्छे दो शब्द उपदेश हम सब के लिए, ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें।
मैं आप सबको क्या कह सकती हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई हूँ यहाँ पर आकर। अब 5 साल के बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पर। पिछले टाइम यशोदा जी के घर में उनका गृह प्रवेश था, नहीं शायद डेटी वेलकमिंग थी, और उसके बाद मैं आज आ रही हूँ और पूरा मंदिर का हुलिया ही बदल गया है। प्रभुपाद जी हमें कहते थे प्यूरिटी इज द फोर्स, तो हम देख सकते हैं देवामृत प्रभु जी की प्यूरिटी के साथ कितने लोग आकर्षित हो गए हैं और ये मंदिर फिर से हरा भरा हो गया है। और मुझे खुद बहुत प्रेरणा मिल रही है यहाँ पर आकर, और मैं चाहूंगी कि मुझे फिर यहाँ पर आने का मौका मिले और आप सबका मैं संग कर सकूं। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतने अच्छे लीडर मिले हैं, और आप सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि इनके आदेशों का पालन करें, इनकी सेवा करें और इनको प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने का सहयोग करें। हरे कृष्ण।
हमने थोड़े उपदेश कहने के, आपने क्या कह दिया? हमारा इरादा कुछ था, आपने कुछ और ही कर डाला है।
इसके अलावा कुछ कहने के लिए है ही नहीं। हरे कृष्ण।